ये आकाशवाणी है। अब आप फरहतनाज से समाचार सुनिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अब से कुछ देर पहले आज अपने स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएसएलवी से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ईओएस 8 का प्रक्षेपण किया। प्रक्षेपण की प्रक्रिया सुबह 9:17 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से शुरू हुई। छोटा उपग्रह प्रक्षेपण यान एसएसएलवी D3 10 से 500 किलोग्राम वजन वाले मिनी माइक्रो और नैनो उपग्रहों को 500 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च करने में सक्षम है। मिशन का उद्देश्य एसएसएलवी वाहन प्रणालियों के दोहराए जाने योग्य उड़ान प्रदर्शन और ईओएस 8 उपग्रह और SR-0 डेमोसेट को 575 किलोमीटर गोलाकार कक्ष में स्थापित करना है। निर्वाचन आयोग आज दोपहर राज्य विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करेगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ साथ महाराष्ट्र और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। निर्वाचन आयोग की टीम ने हाल ही में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी की समीक्षा के लिए जम्मू कश्मीर और हरियाणा का दौरा किया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और सेशल्स के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रोनी गोविंदन आज केरल के कोट्टायम में राष्ट्रमंडल कानूनी शिक्षा संघ द्वारा आयोजित कानून और प्रौद्योगिकी टिकाऊ परिवहन पर्यटन और तकनीकी नवाचार पर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। 3 दिवसीय सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल, कानूनी विशेषज्ञ, शिक्षाविद और तकनीकी विशेषज्ञ भाग लेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना और टिकाऊ परिवहन और पर्यटन से संबंधित चुनौतियों के लिए नवीन कानूनी समाधान विकसित करना है। भारत ने कल अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस अवसर पर विश्व के नेताओं ने भारत को शुभकामनाएं दी और आने वाले वर्षों में नई दिल्ली के साथ अपने संबंधों को और सशक्त बनाने पर बल दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में स्वतंत्रता दिवस पर सभी भारतवंशवासियों को शुभकामनाएं दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि मॉस्को नई दिल्ली के साथ रणनीतिक संबंधों को विशेष महत्व देता है और उसके साथ अपने संबंधों को और विकसित करने का इच्छुक है। कश्मीर घाटी में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कल स्वतंत्रता दिवस पर एट होम रिसेप्शन का आयोजन किया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने शहीदों के परिवार के सदस्यों, स्वतंत्रता सेनानियों, पूर्व सैनिकों, उपलब्धि हासिल करने वालों और केंद्र शासित प्रदेश के नागरिकों के साथ बातचीत की और स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाओं का आदान प्रदान किया। कोलकाता के सरकारी आर्जिकन मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ कथित दुष्कर्म और हत्या तथा उसके बाद हुई तोड़फोड़ के विरोध में भारतीय चिकित्सा संघ ने कल सुबह से 24 घंटे के लिए देशभर में गैर आपातकालीन सेवाएं बंद रखने की घोषणा की है। चिकित्सा संघ ने कहा है कि सभी आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में पीएम श्री स्कूलों के छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और प्रेरणा कार्यक्रमों के पूर्व छात्रों के साथ बातचीत की। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता देश की अमृत पीढ़ी को सशक्त बनाना, प्रोत्साहित करना और मूल्यवान प्रदर्शन की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि बातचीत से वे आश्वस्त हैं कि देश का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। राष्ट्र आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई अन्य प्रमुख नेताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अमृत उद्यान आज से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा, जो अगले महीने की 15 तारीख तक खुला रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में बुधवार को अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन संस्करण 2024 का उद्घाटन किया। इस वर्ष पहली बार 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों को अमृत उद्यान का भ्रमण करने का निमंत्रण दिया गया है। इसके अलावा स्कूलों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों को भी फूलों का अवलोकन करने के लिए आमंत्रित किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।